ओम शांति। गुड आफ्टरनून। आज का हमारा पैनल डिस्कशन, आपने उसका टॉपिक सुना ही होगा, एजुकेशन फॉर लाइफ, और उसमें अंदर सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है एक्शन प्लान। तो यह हमारा पैनल डिस्कशन नहीं है, इट्स अ प्लानिंग डिस्कशन है। तो हर एक यहाँ से जब जाएंगे तो बहुत अच्छे से प्लानिंग लेकर के जाएंगे, क्योंकि हम एजुकेशन बियॉन्ड द डिग्री इस कॉन्फ्रेंस में हम सम्मिलित हुए हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूँ पहले हमारे राजयोगिनी आदरणीय बीके प्रभा दीदी जी को, जो इंचार्ज है ब्रह्म कुमारीज इंटरनेशनल हेडक्वार्टर ज्ञान सरोवर माउंट आबू से, सब जोन इंचार्ज है जडेश्वर गुजरात। अगर हम उनके लाइफ की डेडिकेशन को देखते हैं तो डेडिकेटेड टू स्पिरिचुअल गॉडली सर्विस। हाँ यस, तो आमंत्रित करता हूँ बीके प्रभा दीदी को। देन मैं आमंत्रित करता हूँ प्रोफेसर डॉक्टर आर एल रैना, जो वाइस चांसलर है जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी। देन मैं सेकंड आमंत्रित करता हूँ हमारे आदरणीय नेक्स्ट गेस्ट को, डॉक्टर शोभा तोमर जी। ये मैनेजिंग डायरेक्टर है नीम्स यूनिवर्सिटी से जयपुर, और हमारे प्रोफेसर ममता दीदी, जो हमारे एग्जीक्यूटिव विवेकानंद कॉलेज ऑफ आर्ट्स अहमदाबाद के प्रिंसिपल हैं। कृपया आप अपना आसन पधार के लिए। अभी आप शांति में जिस प्रकार से बैठे हैं, तो शांति में बैठकर आप परमात्मा का भी संस्मरण कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, याद कर सकते हैं आने वाले 2 मिनट के अंदर।
अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा।
परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा।
अंतर मन का आंचल भर ले, चलो आज जीवन सफल करने।
अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा।
अवतरित होकर संदेश का अनहद नाद है गूंज रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा।
ओम शांति। हमने बहुत अच्छे से इस गाने को सुनकर शक्तियों की अनुभूति की, और जैसे शक्तियां हमारे पास आ रही है और हमको हमारे अंदर की शक्तियों को उजागर कर रही है। तो इस हॉल की शोभा बढ़ाने के लिए मैं आपको कुछ एक निवेदन करता हूं कि हम अगर बैठने की व्यवस्था को अगर आप अच्छे से करेंगे तो आप सामने पीछे बैठे हुए गेस्ट को थोड़ा सा आगे आने का मैं निवेदन करता हूं, जिससे हॉल की शोभा और अच्छे से बढ़ेगी। तो हमारे जो आज के जो अतिथि हैं, जो एजुकेशन बियॉन्ड डिग्री कॉन्फ्रेंस में अपना अमूल्य समय निकाल कर आए हैं, तो उनके स्वागत के उपलक्ष्य में हमारे तरफ से उनको एक बहुत अच्छा सा तुलसी का पौधा और सम्मान चिन्ह दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या दीदी। तो आज हम पैनल डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम हमारे पास पहुंचे हुए सभी अतिथिगणों का थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सम्मान हमने बहुत दिल से किया, पर उनके विशेष रूप से मैं कुछ उनका इंट्रोडक्शन बताना चाहता हूं। आदरणीय डॉक्टर आर एल रैना जी, जो वाइस चांसलर है जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी से 2021 से, फॉर्मर वाइस चांसलर है जेके लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी, जो जहां पर उन्होंने 2 terms पास किए हैं, तो वहां से एक्सपीरियंस है। फॉर्मर प्रोफेसर एंड डीन आईएम लखनऊ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लाल बहादुर शास्त्री सिम दिल्ली। एक विशेष बात मैं कहना चाहता हूं उनके बारे में, 35 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस एंड 40 इयर्स लीडरशिप एक्सपीरियंस, फुल ब्राइट स्कॉलर फेलोशिप उन्होंने प्राप्त किया है साइक्रोस यूनिवर्सिटी यूएसए से, ऑथर ऑफ 23 बुक्स एंड 250 रिसर्च पेपर, कंडक्टेड 200+ एकेडमिक एंड फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड रेसिपियंट ऑफ सेवरल हॉनर्स इंक्लूडिंग बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड 2023। तो मैं तहे दिल से उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे नेक्स्ट अतिथि जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर, उनका नाम है डॉक्टर शोभा तोमर जी, वो मैनेजिंग डायरेक्टर है नीम्स यूनिवर्सिटी जयपुर से, क्वालिफाइड डॉक्टर एमबीबीएस एमडी एंड सीनियर हेल्थ केयर लीडर है, रेनो गायकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, एक्टिवली इन्वॉल्व इन वुमेन्स हेल्थ केयर एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट, लीड्स एकेडमिक ग्रोथ एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एट नीम्स यूनिवर्सिटी, मेंबर ऑफ की गवर्निंग बॉडीज इन जयपुर एकेडमिक सेक्टर, रेसिपिएंट शी वाज विंस वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन एजुकेशन मेडिकल साइंस एसोसिएटेड विद नीम्स मेडिसिटी जयपुर। तो उनका मैं बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पूरे सम्मान के साथ हमारे आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी प्रभा देवी का मैं हार्दिक वेलकम करता हूं। स्वागत के लिए आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया दीदी। हमारे नेक्स्ट अतिथि हैं बीके डॉक्टर ममता शर्मा जी, प्रिंसिपल विवेकानंद कॉलेज ऑफ आर्ट्स रायपुर दरवाजा अहमदाबाद गुजरात, काउंसलर इन इंडिया इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी महसाना, फैकल्टी इन पीजी डिप्लोमा एंड एमएससी इन वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी अन्नामल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु फ्रॉम 2009 to 2023। वो पीएचडी गाइड हैं 17 स्टूडेंट्स एंड हैव कंप्लीटेड देयर पीएचडी अंडर सो फार एंड 6 आर इन द प्रोसेस, और 50 ऐसे रिसर्च आर्टिकल्स पोएम पब्लिश इन डिफरेंट मैगजीन एंड जर्नल्स। तो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हमको आज यहाँ पे हमको सुनने के लिए पैनल डिस्कशन के लिए हमें मिली हैं। और जो हमारे जो बैकबोन जो है, जो जिस प्रकार से हम कहते हैं कि हर कोई प्रोग्राम जब हम चलाते हैं तो उसका एक बैकबोन रहता है, तो मैं बहुत आदर के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा राजयोगिनी बीके प्रभा दीदी जी, इंचार्ज ब्रह्म कुमारीज इंटरनेशनल हेडक्वार्टर ज्ञान सरोवर माउंट आबू, सब जोन इंचार्ज जडेश्वर भरूच गुजरात, डेडिकेटेड टू स्पिरिचुअल गॉडली सर्विसेस सिंस द एज ऑफ 13 ईयर्स, 13 साल की उम्र में अपना जीवन को समर्पित किया, 60+ ईयर्स ऑफ एसोसिएशन विद प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, दट शी ट्रेन अंडर ब्रह्मा बाबा दादी प्रकाशमणि एंड दादी जानकी जी, लीडिंग एंड मैनेजिंग 18 सेंटर्स इन भरूच एंड सब जोन, ऑर्गेनाइजर ऑफ मेजर रैलीज पदयात्रा एंड मेडिकल सर्विसेज इनिशिएटिव्स। तो हमारे आज के जो भी पैनलिस्ट हैं उनका मैं फिर से एक बार सम्मान करके हम इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे। ओम शांति। हमारा पहला जिस प्रकार से हमने एजुकेशन फॉर लाइफ को हमने चुना है, तो मेरा पहला प्रश्न है आदरणीय प्रभा दीदी से। दीदी जी, आज कल हम देखते हैं कि एंजाइटी फियर बहुत ज्यादा तरफ, मतलब मानसिक अशांति बहुत दिखाई दे रही है, तो एजुकेशन फॉर लाइफ क्या हो सकती है?
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। भाई साहब ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। वास्तव में हम सभी जो ये अपना जीवन जी रहे हैं, ये हम सबका जीवन बहुत अमूल्य जीवन है, और इस अमूल्य जीवन को हम सभी जो भी आत्माएं हैं वो हर एक ये चाहते हैं कि हमारा जीवन बहुत अच्छी तरह से हम जिए, हर एक की यही चाहना रहती है कि हमारे जीवन के अंदर सदा सुख शांति समृद्धि बनी रहे। तो ऐसे जीवन को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो हमारे इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर बताया जाता है। आप सभी एजुकेशन फील्ड के हैं और जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व होता है। शिक्षा ही जीवन को संवारने वाली है, और ये आध्यात्मिक शिक्षा भी है जो भी हमारे जीवन को श्रेष्ठ और ऊंच बनाने वाली है। आज हम संसार में वो शिक्षाएं तो पढ़ते हैं, लेकिन साथ साथ जो हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाए, वैल्यूबल बनाए, ऐसी शिक्षा आज यही कहेंगी उसका थोड़ा अभाव है। जीवन कैसे जिया जाए उसकी भी हमको एक नॉलेज होनी चाहिए। जो हम सब जी रहे हैं, कहते हैं कि मनुष्य जीवन मिला है, खाते हैं, पीते हैं, मौज करते हैं, चलते हैं, लेकिन यही जीवन नहीं है। जो वर्तमान जीवन है वो हमारे भविष्य के आधार पर मिला है, और अभी हम इस जीवन से अपने साथ ऐसी कमाई करके जाएं जो हमारा भविष्य भी श्रेष्ठ बने। तो जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें आध्यात्मिक शिक्षा की बहुत आवश्यकता है, जिसको हम कहें जीवन के अंदर वैल्यूज बहुत चाहिए। अगर हमारे जीवन के अंदर वैल्यूज है तो हम जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। अगर जीवन के अंदर वैल्यूज नहीं है तो वही हमारा जीवन क्या बन जाता है, एक अशांत में बन जाता है। तो जीवन के अंदर वैल्यूज चाहिए, गुण चाहिए, जिन गुणों के आधार से हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। जैसे कि हम कहें कि जीवन में संतुष्टता अगर गुण है तो मनुष्य अपना जीवन बहुत श्रेष्ठ बना सकता है। कहते हैं संतोषी नर सदा सुखी। अगर संतुष्टता हमारे जीवन में है तो हमारा जीवन सुखमय रहेगा। अगर संतुष्टता नहीं है तो वही जीवन हमारा क्या बन जाता है, दुख और अशांति में बन जाता है। तो जीवन को सुख शांति में बनाने के लिए हमें दिव्य गुणों की आवश्यकता है। और वो दिव्य गुण हम कैसे अपने जीवन के अंदर धारण करें, वो शिक्षा यहाँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में यही दी जाती है कि कैसे अपने जीवन के अंदर हम दिव्यता लाए, दिव्य गुणों को लाए और लाकर के हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सके।
बहुत बहुत शुक्रिया दीदी जी। एकदम हम कहते हैं कि वैल्यू बेस्ड जीवन को बनाने के लिए संतुष्टता, ऐसे दिव्य गुणों को अपनाना चाहिए। पर मेरा नेक्स्ट सवाल है हमारे आदरणीय डॉक्टर आरएल रैना सर जी को। सर आपका एज अ वाइस चांसलर पॉलिसी मेकर करके आपका बहुत बड़ा रोल है, तो एजुकेशन फॉर लाइफ को आपके मन के अंदर भी बहुत होता होगा कि स्टूडेंट के अंदर हम ये इम्प्लीमेंट करें, पर सर चैलेंजेस कहाँ से आते हैं?
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मंच पे मंचासीन सभी डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटीज को मेरी ओर से नमन, सभागार में आए हुए सभी एजुकेशन लीडर्स, एजुकेशन प्रीचर्स, एजुकेशन प्रोवाइडर्स को भी नमन। ये पैनल डिस्कशन सेशन है मालूम है मेरे को, और मेरे को पैनल कोऑर्डिनेटर ने क्वेश्चन पूछा है, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है, मैं उसका आंसर जरूर दे दूंगा। लेकिन वो आंसर देने से पहले दो तीन चीजें आपके सामने रखने का हिम्मत जुटा रहा हूं, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं बता दूं। मैं बहुत कुछ सोच के आया था, बताऊंगा ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, लेकिन सच मानो पहली बार मेरा यहाँ ये विजिट है एज एन एजुकेशन प्रोवाइडर, एज एन एजुकेशन फैसिलिटेटर। तो मैं तो यहाँ से ही लेके जा रहा हूँ जो मैं प्रयास करूँगा कि अपने गुरुकुल में या और भी कहीं मौका मिलेगा उन गुरुकुलों में वो बात ले जाने की। मैं आईएम लखनऊ में, जैसे भाई जी ने बोला, 30 साल रहा और एक छोटे से पद से लेके शुरुआत की लाइफ की असिस्टेंट अटेंडेंट, फिर वहाँ का असिस्टेंट लाइब्रेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, डीन, डायरेक्टर, फिर किसी और संस्था में डायरेक्टर, फिर किसी और संस्था में वाइस चांसलर दो बार जैसे बताया विकास भाई ने, और फिर इस यूनिवर्सिटी में पिछले 5 साल 4 साल से वाइस चांसलर रहा। तो उसका जो एज अ टीचर मेरा जो अनुभव है वो भी मैं साझा करूंगा, एज एन इंस्टीट्यूशन बिल्डर जो मेरा अनुभव रहा है वो भी साझा करूंगा, दो चार उदाहरण देके। कहना ये है जो मैंने कल सुना पूरा, हमारा सारा बल है किसी भी एजुकेशनल सिस्टम का, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, और किसी भी पेरेंट का, किसी भी स्टूडेंट का सपना कि मेरा ये फोकस है, मुझे ये करना है, वो शुरुआत से होता है, प्राइमरी एजुकेशन से भी नीचे जो लेवल है जब वो एंटर करना चाहते हैं, मार्क्स और परसेंटेज यही कंसर्न होता है। 10th में 12th में स्टूडेंट भी उसके प्रति होता है, पेरेंट्स गार्जियंस और एकेडमिक सर्कल से टीचर्स वो भी, ऐसे करते करते वो बहुत अच्छे अंक पा के अपनी अल्टीमेट डिग्री भी ले लेता है बहुत टॉप क्लास के, और अच्छे से उसकी प्लेसमेंट ट्रेनिंग ग्रूमिंग सब कुछ होता है, और बहुत अच्छा पैकेज भी पाता है, क्योंकि 30 साल अगर मैं आईएम में रहा हूं तो उसमें कुछ दम है जो मैं ये थोड़ा सा बता रहा हूं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दे हैव एवरीथिंग इन देयर पोजिशन, बट वॉट दे आर टू हैव इज नॉट इन देयर पोजिशन। द सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, द सेंस ऑफ हैप्पीनेस, द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू होम, टू देयर फैमिली, टू देयर सोसाइटी, to their nation, to the globe. I don't see any connect of that kind ever being taught to them, ever being, they being ever exposed to those. Right? Ye maine kal isi sabhagar mein sham ko ek anubhav maine dekha, ek university ka prayas tha, JECRC ka. Bahut khush hua ki ye university along with, halanki hamari competitor hai, और आप जानते हो कंपटीटर को क्या कहना चाहिए, कब कहना चाहिए, कैसे कहना चाहिए, लेकिन मैं वो अनुभव चाहता हूं जितने भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं इंडिया के, यूजीसी हो, एआईसीटी हो, नैक हो, एनआईआरएफ हो, जो भी रैंकिंग रेटिंग एक्रीडेटिंग बॉडीज है उनको उसकी तरफ ध्यान देना है। आज नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। बड़ी देर से सही हुआ तो जो हमारी नई गवर्नमेंट है पिछले कई सालों से, इन्होंने पहल तो की है, क्या कह के कि हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इंडियन नॉलेज सिस्टम के ऊपर बातचीत हो, ऐसे कई चीजें कही है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है बहुत सारी संस्थाओं में काम हो रहा है, कहीं बहुत सक्सेसफुल है, कहीं अभी भी लिप सर्विस है, कहीं अभी भी वो लिप सर्विस है। और जो कल वो बता रहे थे काल चक्र में, अगर कलयुग ट्रांजिट हो रहा है सतयुग की तरफ, और ये जो वक्फा 100 ईयर्स का है, और उसमें अब कितने वर्ष बचे हैं, ब्रह्म कुमारी को तो 90 वर्ष हो गए अपना प्रयास बढ़ाते हुए बढ़ाते हुए बढ़ाते हुए, और विश्व में 140 कंट्रीज में फैला हुआ है तो, लेकिन ये जो समय थोड़ा सा बचा हुआ है, इस समय का हमें यूज करना है उन यूथ को, उन चिल्ड्रन को जिनको हम ग्रूम करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, नर्चर करते हैं, उनको उन एरियाज की तरफ उनका रुझान ले ले। समय नहीं है, और ना ही ये हो सकता है, जो एलिमेंट्स कल से हमने सुने, ग्रैटिट्यूड, कॉन्फिडेंस, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, टीम वर्क, कंपैशन, केयर फॉर ह्यूमैनिटी, केयर फॉर सोसाइटी, केयर फॉर वेल बीइंग, केयर फॉर एवरीथिंग दैट वॉज टॉक्ड अबाउट, आई डोंट सी, मैं देख नहीं पा रहा हूं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो कायदे से वो एम्बेडेड है। एम्बेडेड मतलब लिप सर्विस नहीं, embedded integral part of our course delivery. जिस दिन वो हो जाएगा तो संभव है, जो हम आशा करते हैं वो होगा। बताया लखनऊ में 30 वर्ष था, और आपको पता है आईएम जैसी संस्था क्या होती है, मुझे उसके बारे में बताना नहीं है। इतना बताना जरूरी है कि 2.5-3 लाख छात्रों में से हमें 100-150 पिकअप करने होते हैं। अब आप सोचो किस टाइप के वो बॉयज और गर्ल्स होंगे जिन्होंने ऑल अलॉन्ग देयर लाइफ दे वुड हैव डन देयर बेस्ट एंड अचीव्ड देयर बेस्ट। उसमें एक घटना एक दिन हुई, क्या हुआ, एग्जाम देना था और एग्जाम ऐसे होता है अगर कोई पेपर मिस हुआ तो एक साल गया, और उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। मैं उस समय उस संस्था का चेयरमैन स्टूडेंट अफेयर्स था, मैं अपने हिसाब से अपने कहता को, लेकिन मैं गया और इधर हॉल देखा, कमरा देखा, उधर एक साइड खाली देखी, उधर ये भी रूल था कि अगर 15 मिनट कोई लेट हो, पहले तो 5 मिनट पहले उनको बैठना होता है, मैं ये 5 मिनट पहले ही की सर का देख रहा था, अगर 15 मिनट लेट हुआ तो ही इज नॉट अलाउड टू सिट इन द एग्जाम। तो मैंने देखा एक बच्चा नहीं है बैठा हुआ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कहां हमने उनको, क्या चूक हो गई, कैसे वो हुआ। और आईएम का एडमिटेड चाइल्ड जिसको अपने करियर का फाइनल पड़ाव क्रॉस करना है वो आया नहीं है, तो रोंगटे खड़े हो गए मेरे, ये सबके हो सकते हैं या किसी के भी नहीं हो सकते हैं। मैं दौड़ा उसके हॉस्टल कमरे में, दरवाजा खुला था, वो एक रजाई लेके लेटा हुआ था अपने बेड पे, लेटा हुआ था। जो ही दरवाजा मैंने थोड़ा फोर्स से खोला, जाग गया। क्या हुआ रमेश, क्या हुआ? तो उठा, सर क्या फायदा है जिंदा रहना, क्या हुआ, क्या नहीं, क्या हो गया? कहता, मैंने कहा एग्जाम है आपका, अभी 5 मिनट बचे हैं, रश करो। नहीं सर, क्या फायदा एग्जाम देने का, क्या लेना है, क्या देना। कल तक वही बच्चा टॉप कर रहा था और आज वो कह रहा है मैं नहीं जाऊंगा। तो धीरे धीरे मैंने समझ लिया कुछ होगा, और मैं आपको एक प्रश्न दे दूंगा, आपसे आंसर मांगूंगा। तो मैंने कहा हुआ क्या, आपको पता नहीं? कल रात को, बॉम्बे का रहने वाला था, डीएम का बेटा था, कल रात को हमारा डॉगी मर गया। बताओ, एज अ टीचर हु डजंट नो इमोशनल कनेक्ट, हु हैज नो आइडिया ऑफ ऑल दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन टॉक्ड अबाउट ड्यूरिंग लास्ट टू डेज, मेरा आंसर उसको क्या होता, मेरा आंसर क्या होता? समय नहीं है, आप लोग बोलोगे, कई योग गुरु से भी मैंने ये प्रश्न किया है, लेकिन जो मैंने किया वो मैं बताता हूं। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कंपोजर में लाया, कहा ओम शांति, परमात्मा प्रभु परमेश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। तो अचानक से वो उठ गया, अचानक से वो उठ गया, उसको लगा कोई मेरे साथ है जो इस दुख को, उसी पीड़ा, उसी तड़प से जी रहा है, सीख मतलब समझ रहा है। तो वो उठा, मैंने कहा अच्छा, स्टूडेंट अफेयर्स का असिस्टेंट मेरे साथ था, तो मैंने उसको बोला इनकी टिकट अभी देखो, क्योंकि इनको जाना है और ये जाएगा बॉम्बे। तो उसने फट से कंप्यूटर पे देखा, उसने कहा 15,000 की टिकट है। मैंने कहा ले लो, अभी ले लो। तो ले लिया टिकट, टिकट उसके हाथ में दे दिया। तो मैंने उससे पूछा ये टिकट कब है, तो उसने कहा सर 3 बजे है और ये 10 बज रहा, अभी 2 मिनट है, 10 बज रहा। तो वो खुद खड़ा हो गया, सर ये तो 3 बजे है, मैं तो जाऊंगा, खुश हो गया, मैं तो उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हो जाऊंगा, क्यों ना मैं उससे पहले एग्जाम दे दूं। दैट इज हाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड राइट नाउ ही इज CMD HLL। लाइक दिस, दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स विच यू हैव टू अंडरस्टैंड देम एट देयर लेवल, देन ओनली वी कैन प्ले टू द ट्यून एंड एक्सपेक्ट। वेयर डू वी टीच दीज काइंड ऑफ थिंग्स? आई डोंट थिंक वी टीच। इसी IIM संस्थान में, जहां जब बच्चे आते हैं, फर्स्ट डे होता है इंडक्शन ओरिएंटेशन। उस दिन हंसी खुशी माहौल होता है सारा। तो क्या हुआ, रात को मैं 1:30 बजे घर पे, मैं 7 किलोमीटर दूर रहता था कैंपस से, फोन आया, सर एक लड़के ने शराब पी है और वो एक टीचर के दरवाजे पे शराबी की हालत में उसने उसको खटखटाया, तो डर का माहौल सा है, तो क्या करना चाहिए? मैंने कहा कुछ नहीं, उस बच्चे के पास जाओ, वॉच करो, ऑब्जर्व करो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं। आया, उसको देखा, उसको बोला गाड़ी निकालो, इसको इसके पेरेंट के पास भेजो, ऐसे बच्चों की हमारे को जरूरत नहीं है। ये मैंने हार्श और हार्ड स्टेप ले लिया, जो अगर मैं इन एक्सपोजर से गुजरा होता तो शायद मैं कुछ और स्टेप लेता। तो उसको भेजा, जब भेजा घर तो उनके ऊपर कहर टूट गया और उसको रेस्टिकेट किया एक चेयरमैन स्टूडेंट अफेयर्स ने, जिसने किसी से परमिशन भी नहीं ले ली, कुछ भी इंस्टेंट डिसीजन ले लिया। वो गया घर गया तो फादर ने देखा, उसने चार्टर्ड फ्लाइट की वहां से, उसके फादर ने, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं, किस भाव और भावना से बोल रहा हूं। वो आया बड़े बड़े सूटकेस लेके मेरे ऑफिस में घुसा। मैं ये बताना नहीं चाहता हूं सूटकेस में क्या था, किस इंटेंशन से आया था, क्या कहने आया था। मैं फर्म रहा, मैंने कहा कुछ नहीं, ये जब तक ये सीखेगा नहीं, रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स, वैल्यू ड्रिवन इंडिविजुअल, जब तक ये नहीं, आप कुछ भी करो ये संस्था उसको नहीं देगी। अगर आप ज्यादा मुझे प्रेस करोगे, इसको इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कहीं दाखिला नहीं होगा। हां दाखिला होगा, आप इसको इन चीजों से क्योंकि तब तक मैं एक दो सेशंस किया था, तो मैंने कहा आप ऐसे ऐसे कर सकते हो तो कुछ शायद होगा। यकीन करो दूसरे साल मैं चूंकि डीन था तो मुझे सेशन लेना था। जब बच्चे आए थे हॉल में बैठे थे, इधर 450 बच्चे थे, तो मुझे उनको भाई ये संस्था जीरो टॉलरेंस है डिसिप्लिन पे, और एक एग्जाम्पल देना था। लास्ट ईयर हमारा ये हुआ, नाम नहीं बताऊंगा। जो ही मैंने कहा नाम नहीं बताऊंगा, वो लड़का खड़ा हुआ, सर वो मैं बच्चा था, मैं सारा कुछ करके आया हूं और गारंटी के साथ कहता हूं अगर आप मुझे वो सीख न देते मैं कभी अपने आप को और अपने लाइफ को और अंडरस्टैंडिंग सेल्फ कभी कर नहीं पाता। तो ये करने की जरूरत है तो ही तो आगे देश बढ़ेगा। और उसने वो क्लब फिर क्रिएट किया IIM में, वेयर दे आर टॉट हाउ टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड योर रोल टुवर्ड्स द सोसाइटी। फिर मैं आया लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में, वहां डायरेक्टर था उस संस्था का। तो एक लड़का न पेरेंट की बात मानता था, न सिस्टम की बात मानता था, न किसी की बात मानता था, और हमारी संस्था में भी 3 पेपर्स में वो फेल हो गया। उसका फादर, सर ये तो ऐसा है। मैं उसको क्या ज्ञान की बातें बताता। मैंने उसको कहा सर 2 महीने आप इसको छोड़ दीजिए यहीं पे। 2 महीने क्या किया मैंने इन्हीं लाइंस पे, थोड़ा सा अनुभव किया कैसे किया, और वो बच्चा फिर उसी बैच का सेकंड टॉपर हो गया। और अभी डाइकिन कंपनी, आप जानते हो डाइकिन कंपनी एयर कंडीशनर्स, उसका MD है, पूरे एशिया को रिप्रेजेंट करता है, मिस्टर जावा नाम है। ये हम कर सकते हैं। कहना ये है कि हम कर सकते हैं बिट्स एंड पीसेस में, नहीं, इसको हमें एजुकेशन सिस्टम में बियॉन्ड डोमेन, बियॉन्ड कोर लाना है और उसको शेप देनी है इंटीग्रेट करके। और इंटीग्रेट करके कैसे होगा, जब ये रेगुलेटरी बॉडीज चाहे UGC हो, AICTE हो, NAC हो, ये इसको समझ लें और इसको हिदायत दे दे यूनिवर्सिटीज को, क्योंकि गवर्नमेंट की सिस्टम है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में शुरू हो, स्टेट में हो, सेंट्रल में हो, प्राइवेट में, तो तोमर मैम जानती है जहां जो वो चाहते हैं वो कर सकते हैं और प्रयास हो रहे हैं, वो होता है। लास्ट संस्था JNU से आने से पहले JKLU था, JKLU का नाम शायद सुना होगा, JK लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी सिंघानिया, जो कंट्री का सबसे लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल ग्रुप है, लार्जेस्ट इन द सेंस इन टर्म्स ऑफ देयर ओवरऑल बैलेंस शीट, नॉट एज सीमेंट, नॉट एज दिस, नॉट एज दिस, इफ यू पुट ऑल ऑफ दोज JK इंडस्ट्रीज इनटू वन, दैट इज द कंट्रीज लार्जेस्ट। सो उनकी ये यूनिवर्सिटी थी, वहां भी मैं फर्स्ट टर्म तो ठीक था, कोई ऐसा नहीं लगा। सेकेंड टर्म में मैंने एक बच्चे को सुबह 5 बजे देखा, उसकी हरकत से देखा कुछ अनटुवर्ड होने वाला है, क्योंकि 4th फ्लोर पे हॉस्टल में अगर एक बच्ची टहल रही है यू कुड सेंस समथिंग, बट विदाउट लेटिंग हर नो दैट आई हैड नोटिस्ड हर सेंसेस आई जस्ट केम इनटू माय एक्शन एज टू समथिंग इज रॉन्ग बाउंड टू हैपन। वो एक्सट्रीम स्टेप पे जा रही थी किसी वजह से, रिलेशनशिप की वजह से, कोई चीज की वजह से, बट वी टुक केयर ऑफ इट बिकॉज आई वॉज माई सेल्फ एक्सपोज टू वॉट कैन हैपन वॉट कैन नॉट हैपन। एंड यू विल बी ग्लैड टू नो शी इज राइट नाउ अ फैकल्टी इन अ लीडिंग स्कूल इन फ्रांस इन सीएड, जहां मैं एक बार जाता था। तो इन सब एग्जाम्पल्स के माध्यम से सिर्फ आप तक यही पहुंचाना चाहता हूं, वही बात, अनलेस एंड अनटिल we make such kind of things integral and embedded parts of our curriculum just the way it will produce good marketing managers, good doctors, good engineers, good lawyers, but not good human beings, which is the need of the day, which is the need of the hour, which is the need of the society, which is the need of the nation, which is the need of the globe, and we can produce and provide them. One more experiment I will share with you. One more experiment I will share with you, and with that I will close. certainly I will close with one minute, if you can permit.
Thank you, sir.
One example. COVID came into being in 2020, right? In 2019, I did a course, Hatke, because I was vice chancellor, I could do whatever I wanted to do, good or bad, success or failure. I was not mindful of that, but let me try it out. Why? Because I had seen in a university in the United States, there was a course running as SEAL, Samandarwala SEAL, Social Emotional Ethical Learning. When I deep dived into it, the university, I found that course was offered by that university under a chair professor, which was instituted by that university in the name of His Holiness, the Nobel Laureate, Dalai Lama. I said, our teachings, our preachings, our principles are not respected and treated the way they should be respected in our own country, but they are respected in a place which is far off. I came back, I learned that course. It took me 6 months to understand that course first in its entirety. Then I run that course in that university. After that course, this COVID came. And we took upon ourselves that we have to reach to the people elderly, 65 and above, to serve them medicines at their home because their children are not there, wards are not there, and they are desperate. I put a note all over the university, I need 5 or 7 boys and girls who can go door to door. And Pat came the reply, the people who had done that course came forward that we will do it, irrespective of what it did cost to them, because they had gone in an experiential learning mode to organizations like Jaipur Foot, Akshay Patra, and learned what is really service, service in turbulent times. So these are the kinds of experiences I have tried to master and wanted to share with you, answering the question that he had said. I said, there is a will, there is a way. Challenges are there. If we take it upon ourselves, as teachers, as professors, as vice chancellors, as heads of institutions, we can confront these challenges and convert them into opportunities and be the winners. All the very best. Thank you so much.
बहुत बहुत शुक्रिया सर. आप जैसे अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे थे, हमको एक्सपीरियंस फॉर लाइफ को सुनते सुनते एक अनुभव क्या होते हैं और उसको हम एजुकेशन के तौर से किसके अपना सकते हैं. तो आप सभी ने अपनी अपनी रीति से अपना अपना एक्शन प्लान बनाया ही होगा. पर मेरा अगला सवाल है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है नीम्स यूनिवर्सिटी से, डॉक्टर शोभा जी, मुझे आपसे यही सवाल पूछना है कि प्रोफेशनल एजुकेशन में मेडिकल और टेक्निकल स्टूडेंट्स के भीतर ह्यूमन वैल्यूज, सर ने जिस प्रकार से कहा ग्रैटिट्यूड, केयर, इंटीग्रिटी, एम्पैथी, इस प्रकार से वैल्यूज को अगर इम्प्लीमेंट करना है, विकसित करना है, तो आपका एक्शन प्लान एक्चुअल में क्या रहेगा?
देखिए, हमारे यहाँ जो मेडिकल स्टूडेंट्स आते हैं, ओम शांति, डिग्निटीज ऑन द डाइस एंड ऑफ द डाइस, मैं आप सबको सादर नमन करती हूँ. देखिए, हमारे यहाँ जो मेडिकल स्टूडेंट्स आते हैं वो एग्जाम पास करके आते हैं, नीट के थ्रू आते हैं, तो वो थोड़े से वेल मैनर्ड होते हैं क्योंकि पढ़कर आते हैं. और जो बाकी हैं, इंजीनियरिंग के हैं, एमबीए के हैं, ये विदाउट एनी उसके आते हैं एग्जाम दिए हुए, तो ये इनमें थोड़ा सा उद्धण भाव ज्यादा होता है, ज्यादा नोटी होते हैं. जैसे कि हमारे ऑडिटोरियम में बैठे कोई फंक्शन हुआ तो ऐसे करके कुर्सी पर चढ़ चढ़कर कूदेंगे. और लेकिन हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स थोड़े से ज्यादा होते हैं, तो लेकिन जब दोनों में इंटरेक्शन होता है तो मेडिकल स्टूडेंट्स को देख देख कर ये भी ठीक हो जाते हैं, तो हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स ही उनको ठीक कर देते हैं, वेल मैनर्ड हो जाते हैं और ठीक हो जाते हैं. ये बिहार से हैं ज्यादातर, तो ये स्मोकिंग भी करते हैं, और हमारे यहाँ तो फॉरेन स्टूडेंट्स भी हैं तो ड्रिंक भी करते हैं, तो लेकिन हमारे यहाँ जो है नो ड्रिंक नो स्मोकिंग, क्योंकि अगर एक बच्चा स्मोक करता है तो वो तो अपने फेफड़ों को तो खराब करते ही करता है, जो उसका दूसरा वाला है उसको भी पैसिव स्मोकिंग देता है. तो ये सब हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही अच्छा वातावरण है, सब बड़े प्यार से रहते हैं.
तो आपने जो एजुकेशन फॉर लाइफ को अपने इंस्टीट्यूट को ही बनाया है, जहाँ पे जाकर के हर व्यक्ति को अपने जीवन के प्रति शिक्षा उसको मिलती है. तो हमारे नेक्स्ट पैनलिस्ट जो है आदरणीय डॉक्टर बीके ममता जी, सभी स्टूडेंट्स के लिए अभी यहाँ पे बोल रहे हैं, पर एजुकेटर्स के लिए अगर हम बात करते हैं तो एजुकेटर्स के लिए एजुकेशन फॉर लाइफ आगे चल करके क्या होना चाहिए?
ओम शांति। आदरणीय दीदी, आप सभी, वैसे तो भाई साहब ने जो प्रश्न किया, एजुकेशन बियॉन्ड डिग्री जो बात करते हैं और एजुकेशन फॉर लाइफ, 1936 में परमात्मा ने एक व्यक्ति को टीचर बनाया पहले, तो जो है प्रजापिता ब्रह्मा आगे जाके नाम दिया। तो 1936 से बियॉन्ड डिग्री और लाइफ के लिए क्या एजुकेशन होना चाहिए। हमारी दीदी 13 साल की उम्र से लाइफ का एजुकेशन पढ़ रही और पढ़ा रही, तो ये हमारे लिए टीचर है। आजकल होता क्या है कि हमारे अंदर अगर मेडिकल डॉक्टर भी है तो टेस्ट के माध्यम से आपकी बॉडी में क्या होना चाहिए वो टेस्ट कराते हैं। वो खुद चेहरा देख के या नाड़ी देख के या ऐसे पता नहीं कर पाते हैं कि अंदर B12 की कमी है या D3 या पोटेशियम या मैग्नीशियम या ऐसे। लेकिन आजकल टीचर के लिए भी ये D3 पोटेशियम मैग्नीशियम ये सब हो गया, व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब क्या हो गया, यही हमारा D3 विटामिन्स वगैरह हो गए। तो इससे क्या होता है कि जो शिक्षा शिक्षकों को एक्चुअली देनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, उसके लिए हम ही जिम्मेदार है क्योंकि हम टीचर है। हम शिक्षकों में एक आदर्श ढूंढते हैं तो वो चाणक्य को ढूंढते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि एक मिनिस्टर थे, बड़े यंग थे, उनको मैं हमारी दादी से मिलाने ले गई, तो वो मिनिस्टर ने जैसे ही दादी को देखा वो बिल्कुल दादी के चरणों में बैठ गए और इतने अंदर से भावुक हो गए, दादी मेरे सिर पे आप हाथ रखो, दादी का वो ऑरा, दादी के वो वाइब्रेशन, और मैंने देखा आहा ये कितने अंदर से खाली हैं। और दादी का जैसे ही हाथ, दादी ने उनको टोली खिलाई और हाथ रखा और जो दादी ने शब्द उनको कहे तो वो उनको ऐसा लगा कि जैसे मैं भरपूर हो गया। तो ये एजुकेशन फॉर लाइफ है। तो शिक्षक हमें ऐसे बनना है कि हमारे पास बच्चे आए तो बच्चे ये महसूस करें कि टीचर ने मुझे सिखाया। जैसे हम कहते हैं कि पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है व्यवहारिक ज्ञान में, लेकिन पढ़ाई लिखाई भी आवश्यक है। जब तक हम शिक्षा नहीं लेते हैं, शिक्षित नहीं होते हैं, दूसरों को हम नहीं कर पाएंगे। तो जब ऐसे वाक्य आते हैं, जब ऐसी शिक्षा के लिए हम लोग आगे आते हैं, तो भाई साहब ने बताया, ये बहन जी ने भी बताया कि बच्चे ड्रिंक्स करते हैं या नोटोरियस होते हैं, हाँ हम ये जज नहीं कर पाते हैं कि भाई ये आर्ट्स फैकल्ट, मैं तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी की हूँ, तो हमारे पास जब बच्चे आते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम उनको वो चाहे एंट्रेंस एग्जाम थ्रू आए हों चाहे कैसे भी आए हों, लेकिन टीचर होता है ना उसका पहला कर्तव्य वो माँ बाप बनते हैं, माता पिता के समान टीचर होते हैं, गुरु एक स्टेप ऊपर है, ऐसे बनते हैं। लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं कि हम शिक्षक ही, बच्चे तो ड्रिंक्स करते वो अलग बात है, लेकिन शिक्षक ही ड्रिंक्स करते हैं, हम ही व्यसनी हो गए हैं, तो हम बोल नहीं पाते। जब तक हम व्यवहार में शिक्षा को नहीं लाते ना अपने व्यवहार में, तो हम दूसरों को सत्य बोल नहीं सकते। हम सब जानते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, अच्छी बात है, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन व्यवहार में क्या आता है। तो लाइफ के एजुकेशन इस विश्वविद्यालय में हमने सीखा है, दादियों से बड़ी दीदियों से हमने सीखा है। तो ये एजुकेशन जो यहां मिल रही है हमको स्पिरिचुअल एजुकेशन मिल रही है। कई बार लोग समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारी कोई धर्म की बात करते हैं, लेकिन हम धर्म की बात नहीं करते, हमारे लिए कोई जाति भाषा धर्म वर्ग ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन हमारे यहां ये जो शिक्षा में मिसिंग लिंक है स्पिरिचुअलिटी, उस मिसिंग लिंक को भरने का कार्य वो एक्शन प्लान लेकर के ब्रह्मा बाबा ने ये संस्था की स्थापना की थी। और उस एक्शन प्लान को चलते 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 आज 90 साल हो गए, नव दशक हो गए। और आज हम लोगों ने, उस समय भी हम ये बताते थे एजुकेशन बियॉन्ड डिग्रीज कि हम लोग स्पिरिचुअल हैं, तो वो वैल्यू सिस्टम को यहां से इंप्लीमेंट किया। हम लोग हर साल शिक्षा से जुड़े हुए हजारों लोगों को स्पिरिचुअलिटी सिखाते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि हर कॉन्फ्रेंस में एक दो यूनिवर्सिटीज ऐसी आती हैं, कॉलेजेस ऐसी आती है कि वास्तव में ऐसे लोग हैं जो बच्चों को वैल्यूज देना चाहते हैं और वो आकर के हमारे साथ MOU करते हैं। जैसे आपने फर्स्ट डे देखा कि ब्रह्मा कुमारी चेयर बनाते हैं हम, जैसे हमारे मुकेश भाई थॉट लैब बनाते, क्यों? पूरी थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। ये व्हाट्सएप इंस्टा ये सबके पीछे हमारा कितना टाइम जाता है, कीजिए, टेक्नोलॉजी का उपयोग कीजिए, लेकिन टेक्नोलॉजी का उपयोग इतना नहीं होना चाहिए कि हमारी सारी वैल्यूज और सारी स्पिरिचुअलिटी खत्म हो जाए। तो ये जो बातें हैं, ऐसी बातें जो हम टीचर्स को वास्तव में पहले हमारे ब्रह्मा बाबा कहते थे मैं करूंगा, मुझे देख और करेंगे, तो मुझे पहले करना है। अगर मैं ही नहीं सुधरता या सुधरती तो मेरे स्टूडेंट्स कैसे सुधरेंगे? स्टूडेंट तो तुरंत कहेंगे मैडम आप तो करते हो, फिर हमको क्यों बोलते हो, है ना? तो इस प्रकार से शिक्षा में जो परिवर्तन की आवश्यकता थी, और जब परिवर्तन आया शिक्षा में NEP के माध्यम से, तो उसमें क्या हुआ, कई विरोध भी हो रहे हैं, कुछ लोगों को समझ में नहीं, फर्स्ट सेटअप है इसीलिए कभी कभी समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे वो भी रूटीन में आ जाएगा और तब हमें पता चलेगा कि ये जो स्किल्स भी जरूरी है। स्पिरिचुअलिटी तो जरूरी है ही, अगर स्पिरिचुअलिटी शिक्षा में अगर नहीं होगी तो लाइफ भी हमारी, समझो खाली डिग्री अगर हम लेंगे तो खाली डिग्री लेकर के आपको अर्थोपार्जन तो कर लेंगे, सैलरी तो मिल जाएगी, लेकिन जीवन का क्या? मैं हमेशा रात को सोती हूं तो एक नींद में मेरी मतलब सुबह हो जाती है, आजकल लोगों को नींद नहीं आती है ना, तो ये सब क्यों होना है? इसीलिए टीचर के ऊपर दृष्टि होती है सबकी, कि अगर शिक्षक सुधरता है, एक शिक्षक, तो वो 100 बच्चों को सुधार सकता, सारे बच्चे सुधर जाए ऐसा हम नहीं कहते, लेकिन अगर एक भी सुधर गया, जैसे हमने ये कॉन्फ्रेंस की, इसमें 300 400 500 लोग आते हैं, उसमें से अगर 2-4 भी स्पिरिचुअल एजुकेशन लेने लगे और बच्चों का जीवन बनाने लगे, तो कितना ये फल जो है वो हमारे लिए, ये बस इतना ही काफी। जरूरी नहीं है कि सारी दुनिया सुधर जाए, हम तो चाहते हैं सारी दुनिया सुधर जाए, लेकिन हमारा ये जो लाइफ के लिए जो एजुकेशन यहां दिया जाता है वो स्पिरिचुअल एजुकेशन की आवश्यकता आज है, ये मैं समझती हूँ।
बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत सभी तालियां बजा करके सम्मानित करेंगे। दीदी जी, आपने जिस प्रकार से कहा कि इन्फॉर्मेशन जो है इसको ट्रांसफॉर्मेशन बनाने का माध्यम ये कि जीवन लेने की शिक्षा है, पर एक ऑडियंस से ऐसा एक सवाल आया था प्रभा दीदी आपसे है कि ऑडियंस के तरफ से ऐसे आता का मतलब सवाल पूछा गया था कि ज्ञान सरोवर में प्रतिदिन वो सुबह 7 बजे मेडिटेशन हॉल में सभी भाई बहन कौन सी शिक्षा लेने के लिए जाते हैं, उनको कौन पढ़ाता है, और ये शिक्षा के लिए लेने के लिए हमको एडमिशन प्रोसेस या फीस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा उन्होंने पूछा था, तो मेरे ख्याल से ये सुप्रीम टीचर्स का आप थोड़ा सा शिक्षा का क्षेत्र बताएंगे।
अभी प्रश्न तो बहुत अच्छा है, ज्ञान सरोवर में कौन सी शिक्षा दी जाती है, तो शिक्षा की बात चल रही है तो मैंने पहले कहा था कि वैल्यूज जीवन के अंदर बहुत चाहिए, और सबने यही बताया कि वैल्यूज होंगी, शिक्षा में वैल्यू की जरूरत है। खाली शिक्षा किताब पढ़ा दी जाती है, उससे जीवन नहीं बनता है, लेकिन उनके अंदर वैल्यूज चाहिए। तो ममता बहन ने कहा कि परमात्मा ने भी यहाँ टीचर बन करके आकर के पढ़ाई पढ़ाई। तो जो परमपिता परमात्मा है इस सृष्टि पर आते हैं और आकर के जो वैल्यूज जीवन में धारण करने के लिए वो हमें शिक्षा देते हैं। और शिक्षा कैसे देते हैं कि परमात्मा अपने मुख से जो महावाक्य उच्चारण करते हैं, जो आप सभी ने यहाँ पर 3 दिन रह करके सुबह में और हर एक जो भी समय मिला उसके अंदर आपको आत्मा के बारे में बताया होगा, परमात्मा के बारे में बताया होगा, ये ज्ञान के बारे में बताया होगा। तो परमपिता परमात्मा हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें वो मार्गदर्शन देते हैं। परमपिता परमात्मा पिता भी है तो साथ साथ वो टीचर बन करके हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने की वो पढ़ाई भी पढ़ाते हैं। जो पढ़ाई को हम सभी परमात्मा के जो महावाक्य हैं उन महावाक्यों को हम मुरली कहते हैं, जो उस मुरली को हम सवेरे 7 बजे हमारा टाइम होता है और सभी वो सुनने के लिए आते हैं कि परमात्मा हम सबके लिए जो महावाक्य उच्चारण करते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, जीवन को कैसे चलाएं, जीवन कैसे चलना चाहिए, समाज में कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, हर प्रकार की नॉलेज परमात्मा हम बच्चों को देता है। जैसे कहा ना कि दीदी 13 साल की आयु में आए, तो हम तो छोटे बच्चे थे, बच्चे आए और बच्चों को क्या ज्ञान होता है, कुछ नहीं होता है, लेकिन परमात्मा ने ही हमको ज्ञान वो समझ देकर के ऐसा श्रेष्ठ जीवन दिया। तो भगवान हम सबको हर प्रकार की नॉलेज देता है कि समाज में कैसे रहना है, कार्य कैसे करना है, जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाना है, वैल्यूबुल कैसे बनना है, हर प्रकार की शिक्षा दी जाती है। तो वो शिक्षा जो है उस शिक्षा को ही हम मुरली कहते हैं, परमात्मा के महावाक्य जो है उसको हम मुरली कहते हैं। और वो मुरली हम रोज सुनते हैं, क्योंकि कोई भी बात है जो रोज रोज जब सुनते हैं तो जीवन में हम प्रैक्टिकल ला सकते हैं। सुनेंगे ही नहीं तो कैसे लाएंगे। देखो हम शास्त्रों में भी सुनते थे, भक्ति भी करते थे, पूजा भी करते थे, पाठ भी करते थे, रोज क्यों करते, भगवान को रोज क्यों याद करते। कहते भगवान को याद करने से जीवन श्रेष्ठ बनता है, सद्बुद्धि मिलती है, क्योंकि वो श्रेष्ठ है तो उसको याद करने से शक्ति मिलती है। परमात्मा तो एक जनरेटर है, जैसे जनरेटर होता है बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो उसका कनेक्शन जनरेटर से जोड़ा जाता है, तो जब कनेक्शन जनरेटर से जोड़ देते हैं तो बैटरी चार्ज होने लगती है। इसी प्रकार हम आत्माओं का परमात्मा जनरेटर है, जब उसके साथ हमारा कनेक्शन जुड़ता है तब हम आत्माओं के अंदर वो शक्ति और ताकत आती है। तो कनेक्शन जोड़ना, हम परमात्मा को याद करते हैं। और परमात्मा को कैसे याद करना है, परमात्मा से अपना संबंध कैसे जोड़ना है, परमात्मा से कैसे हमें वो ज्ञान के महावाक्य सुनने हैं जिनको सुनकर के हम अपने जीवन में धारण करते हैं। तो रोज हम वो महावाक्य सुनते हैं और सुन करके उनको अपने प्रैक्टिकल जीवन के अंदर लाते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कैसे व्यवहार निभाना है, किसके साथ कैसे, हर प्रकार की नॉलेज हमको इस परमात्मा के महावाक्य मुरली के अंदर मिलते हैं, जो हम अपने जीवन में धारण करके चलते हैं और अपने जीवन को हम श्रेष्ठ बनाते हैं। ये परमात्मा के महावाक्य ही हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाले और मार्गदर्शन देने वाले
हैं। दीदी आपने बहुत अच्छे से हमको समझाया कि यहाँ पे सुप्रीम टीचर परमात्मा हमको शिक्षा देते हैं, पर दीदी एज ए एजुकेटर अगर मैं यहां से ज्ञान सरोवर कैंपस में फिर मैं नेक्स्ट दो दिन में अपने जॉब के लिए अटेंड हो जाऊंगा, फिर उसके लिए मैं समय कैसे निकालूं? क्योंकि हर रोज आपने बोला है, तो एज ए एजुकेटर हम यहाँ पे इस सेशन में एक्शन प्लान बनाने के लिए बैठे हैं, तो हम एक्शन प्लान क्या बना करके जाए?
परमात्मा हम सभी को कहते हैं कि 24 घंटे हैं, और 24 घंटे के अंदर हमें डिवाइड करने हैं 8-8 घंटे। तो 8 घंटे हम अपने लिए देते हैं, 8 घंटे किसके लिए देते हैं, जॉब के लिए देते हैं, 8 घंटे बचते हैं, तो वो अपने स्वपुरुषार्थ के लिए भी हमें देने चाहिए। क्योंकि क्या है, जीवन हमको मिला है, तो जीवन जो मिला है वो 24 घंटे हम अपने ही कार्य व्यवहार में रहें, अपने लिए अगर हम समय नहीं निकालते हैं तो हमारा जीवन फिर क्या हो जाता है? तो अपने लिए एक घंटा आधा घंटा अपने आप से बातें करने के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें निकालना चाहिए। तो जो भी परमात्मा के बच्चे, परमात्मा हमेशा यही कहता है कि अपने समय में से थोड़ा सा समय अपने स्व पुरुषार्थ के लिए निकालो। जैसे देखो, हम भक्ति भी करते थे, भगवान के पास जाते थे, भजन करते थे, कीर्तन करते थे, तो समय निकालते हैं ना उसके लिए भी, समझते हैं कि भाई भगवान को याद करने से ही हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा। तो भगवान की याद और अपने पुरुषार्थ के लिए हमें थोड़ा सा समय अपने आप के लिए निकालना जरूरी है और निकालना ही चाहिए।
मेरे ख्याल से सभी ने इस पॉइंट को नोट डाउन किया होगा, और हमारे जो नजदीक के जो ब्रह्म कुमारी सेंटर है उसको भी आप जानकारी ले सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं। पर मेरा भाई साहब आपसे एक सवाल था कि अभी के वर्तमान काल में सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली स्टूडेंट सुसाइड को रोकने के लिए असफल हो रही है। इस स्थिति में इंस्टीट्यूट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी बनती है जिससे स्टूडेंट का देन टीचर्स का मेंटल वेलबींग भी सुरक्षित रहे? तो ये बहुत अच्छा वर्तमान है।
शायद मैंने इसका उत्तर क्वेश्चन जाने बिना ही बता दिया था कि उनको इस जैसे मिशन से सीख लेनी चाहिए, इस जैसे मिशन से सीख लेनी चाहिए। ये जरूर एजुकेशन देते हैं, बट दे डोंट से इट इज फॉर अ डिग्री। आई डोंट थिंक दे आर इश्यूइंग अ डिग्री ऑल्सो, बट दे आर प्रोवाइडिंग एजुकेशन विच इज मेकिंग अ पर्सन कंप्लीट एंड सक्सेसफुल। देर आर नो इंस्टेंसेज ऑफ एनी काइंड दैट आई हैव हर्ड पीपल हु हैव अंडरगॉन सम एक्सपोजर विच इज जो यहां का ईश्वरीय विश्वविद्यालय देता है, जिस फॉर्म में भी उन जैसी संस्थाओं में ऐसे नहीं है। तो हमें वक्त की पुकार है, और मैं मानता हूं एक स्लोगन हम लोग देते हैं, कहते हैं एज टीचर्स, कैच देम यंग। सो इफ वी एज पेरेंट्स आर सेंसिटिव टू आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देन वील बी एबल टू सो द सीड्स इन अवर चिल्ड्रन। मैं अपना फिर एक एग्जाम्पल देता हूं। अभी मेरा ग्रैंड चाइल्ड हुआ, अभी ग्रैंड मतलब 3 महीने पहले ग्रैंड चाइल्ड हुआ। वो ना रिंग रिंग के शिवरात्रि के दिन, हाँ हम कश्मीरी ना शिवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाते हैं, इट्स अ 4-डे फेस्टिवल फॉर कश्मीरी पंडित्स। तो मैं मंदिर में शंकर जी की वो रखी थी, उस पर पूजा कर रहा था। छोटा कमरा है, छोटे कमरे में शंकर जी का पूरा परिवार सजाना या और भी जितने देवी देवता है उनकी पूजा करना, थोड़ा कम स्पेस होता है। मैं जल चढ़ा रहा था उस पे, तो उसकी नजर किस पे पड़ी, वो चीखने लगा, रोने लगा, सिर्फ हाथ से, बाएं हाथ से ऐसे ऐसे कर रहा है। तो मैं देख रहा हूं ये क्यों रो रहा है, बाय गॉड, मतलब ये परमात्मा गवाह है, ये बिल्कुल हार्ड फैक्ट है। तो ऐसे, अरे 3-4 महीने का बच्चा ऐसे ऐसे रो रहा है। तो बारीकी से मैंने देखा, वहां त्रिशूल लटका हुआ था, उस पर छोटा सा एक सिलाई समान डमरू था।
तो वो कह रहा था मुझे वो दे दो डमरू, ऐसा ही वॉज शिवा. वाई? अरे व्हाट डज ही नो अबाउट डमरू, व्हाट डज ही नो अबाउट शिवा? बिकॉज हिज मदर वॉज ऑल द टाइम वेन शी वॉज इन द वूम डूइंग दैट पूजा एंड अदर काइंड ऑफ थिंग्स. आई थॉट इफ दैट इज पास्ड ऑन टू द चिल्ड्रन वाइल दे आर इन द वूम, इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स टू क्रिएट सम वैल्यूज एज दे आर फॉर्मिंग, एज दे आर डेवलपिंग. Then it will be taken up by the education system and nurtured, groomed properly. But more importantly, as I said, the system has to wake up, the regulators have to wake up, the governing bodies of the government have to wake up and make such education an integral and compulsory component of the education system. Then you will not see suicides, you will not see, you know, all kinds of things which I explained in my cases. They will never ever repeat. They will never ever repeat. You don't have to give them the tag of spirituality. You don't have to give them the tag of dharam. You don't have to give them any tag. But tell them this is life skill. As they are learning IT skills, as they are learning all other skills, you have to make sure that these are taught and learned by the learners as their life skill. If they want to see education beyond life.
बहुत अच्छे तरीके से भाई सब ने बताया. और प्रैक्टिकल है ये बातें सब, बहुत प्रैक्टिकल है. पर मैं डॉक्टर शोभा जी से बात करना चाहता हूँ कि आप सर्वे सर्वा है, निम्स यूनिवर्सिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आपके हाथों में बहुत बड़ी पावर है. अगर आपको इस पावर का तो आप यूज करते ही हैं और आपने देखा है कि स्टूडेंट्स के लाइफ में एंजाइटी स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो आपके इंस्टीट्यूट में एज अ कोई ऐसी जगह या ऐसा कोई स्थान आपने अपने इसमें डेवलप किया है कि जो या कुछ करना चाहते हैं उसके ऊपर आप कुछ प्लान बताएंगे?
वैसे तो हमारे यहाँ स्टूडेंट काउंसिल बनी हुई है. हमारे यहाँ टीचर्स पेरेंट्स की मीटिंग भी हम करते हैं, लेकिन फिर भी आज के मैं देखती हूँ कि बच्चों में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, चाहे वो एग्जाम को लेकर हो, या बच्चे जो फर्स्ट ईयर के होते हैं पहली बार घर से आते हैं, या बच्चे जो पहले पढ़ते हैं हिंदी मीडियम स्कूल के पढ़ते हैं या एकदम इंग्लिश मीडियम स्कूल में आ गए हैं, तो उनको क्लास में समझ में नहीं आता है. तो मैं चाहती हूं और मैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से भी कहूंगी कि कोई एक बड़ा सा आपको स्पेस दे दिया जाए, कमरा दे दिया जाए, वहां मेडिटेशन हो, जैसे भी आप ठीक करते हैं. तो मैं चाहूंगी कि इससे हमारे बच्चों का स्ट्रेस भी कम होगा, उनको पढ़ने में भी सुविधा होगी और उनका मानसिक डेवलपमेंट भी ठीक होगा. और जैसे कि ये शराब के लिए जाते हैं या सिगरेट है, मैं समझती हूँ कि आप ये सब उनको ठीक कर देंगे, मेरी ऐसी आशा है.
बहुत अच्छा. ममता दीदी, आप कुछ उसके अंदर कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं?
देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं. टीचर जो होते हैं ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है, इसीलिए टीचर को लोग आदर से देखते हैं. आजकल टीचर कहते हैं, लोग कहते हैं कि बच्चे बिगड़ गए हैं. एक्चुअली बच्चे नहीं बिगड़े हैं, टीचर बिगड़ गए हैं. कहने का भाव ये है कि हमारा जो उत्तरदायित्व है ना, वो हम नहीं निभा रहे हैं. जैसे भाई साहब ने कहा कि एक उदाहरण है, तो ऐसे हमारे पास कई प्रकार के बच्चे आते हैं, पैसे वाले घर के भी आते हैं और गरीब घर के भी आते हैं. तो एक बार एक हमारा स्टूडेंट होगा, तो वो हमारी मैडम एक बार मेरे पास आई, कहती है कि मैडम एक बच्चा है, वो कहता है कि मैं तो बस सब मर जाऊंगा. तो मैंने कहा क्यों? तो उसको बुलाया कि भाई तू क्यों मरना क्यों चाहता है? तो कहता है कि मेरी मम्मी रोज मुझे बोलती है मर जा, तो इसलिए अब तो मैं सचमुच में मरना ही चाहता हूं. तो मैंने कहा कि आपकी मम्मी को बुलाई, घर में कौन कौन है, ये फिर साइकोलॉजी के प्रोफेसर को बुलाया. मैंने कहा देख भैया, आपको ये केस स्टडी में दे रही हूं, आप इसका काउंसलिंग करो और इसके मूल में पहुंचो. उसको बहुत अच्छी तरह से मैंने कहा, अगर ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ा हुआ है तो इसको रिहेब सेंटर में हम ले जा सकते हैं. पर वो साइकोलॉजी के प्रोफेसर ने अच्छी तरह से काउंसलिंग किया. मैंने कहा रोज मुझे रिपोर्ट देना, तो वो रोज रिपोर्ट देता था. मैडम उनके घर में ऐसा है, उसके पिताजी मजदूरी करते हैं, माँ अकेली घर में रहती है और दादाजी घर में हैं. अब वो कहता है कि दादाजी जो है वो मुझे प्यार नहीं करते और मैं कुछ दादाजी के पास जाती हूँ, मेरी माँ मुझे डांटती रहती है. मैंने कहने का भाव, उस जो वातावरण है ना, तो घर में या कॉलेज में, कॉलेज में भी हम एक वातावरण को क्रिएट कर सकते हैं ऐसा कि ऐसे प्रॉब्लम्स बने ही ना। पहले तो अगर प्रॉब्लम्स बनते हैं तो उसको बहुत ही आराम से, कभी कभी प्रॉब्लम्स होते हैं तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। मेरा एक टीचर कहता था, वो प्रिंसिपल स्कूल में थे, तो वो कहते मैडम मैं तो पेरेंट्स को खिड़की में से देखता हूँ, पेरेंट्स जैसे ही एंट्री लेते हैं ना तो मेरा बीपी बढ़ जाता है। वो कहते हैं कि अगर पेरेंट्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेके आए होंगे। मैंने कहा ऐसे सोचते क्यों हो आप है? तो जब मेरे पास ऐसे प्रश्न आते हैं तो बड़ी आराम से स्पिरिचुअल लेवल पर मैं उसको टैकल करती हूँ, और हो सके इतना पॉजिटिव वे में, रहम की भावना रखते हुए। बच्चों को डांटना भी नहीं है, हमारे ब्रह्मा बाबा कभी नहीं डांट, दीदियां हमें कभी डांटती नहीं है, वो प्यार से समझाती है देखो ऐसा नहीं तो ऐसा करना चाहिए। तो आज तक मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरे टीचर भी स्पिरिचुअल थे, मेरे फादर भी स्पिरिचुअल थे, और आज मैं जिस पोस्ट पर हूँ तो मेरी कॉलेज में भी इस तरह से मेरा पूरा स्टाफ है, उनको भी हम इस तरह से टैकल करते हैं। और मेरे जो एनएसएस के स्टूडेंट हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, तो 50-50 का ग्रुप, ऐसे में हमारे ब्रह्मा कुमारी इसका एक रिट्रीट सेंटर है तो वहाँ एनएसएस का कैंप करवाते हैं, तो बच्चे वहाँ 7 दिन तक रुकते हैं तो वो एनवायरमेंट को बहुत अच्छा एंजॉय करते हैं, और फिर वो सोचते हैं हाँ मैडम हमको भी मेडिटेशन करना है। क्योंकि वो अनुभव जब तक नहीं करेंगे ना लाइफ में, उसका अनुभव नहीं करेंगे, खाली बात करते रहते हैं हम हाँ मेडिटेशन करना चाहिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपने भी देखा होगा कि आप 3 दिन तक यहाँ रहे लेकिन अभी जितने बैठे हैं ना उससे डबल 6.5 से 7.5 का जो मेडिटेशन किया ना हमने 2 दिन, उसमें एक भी शब्द बोले बिना आप लोगों ने कितना आपकी इनर क्वालिटी को डेवलप किया ना, सबको अनुभव हुआ ना उस बात का। तो मेडिटेशन से क्या होता है कि हमारी बुद्धि जो है वो पॉजिटिव होती है, और जब बुद्धि पॉजिटिव होती है तो निर्णय भी पॉजिटिव ले सकते हैं हम, हर चीज को नेगेटिव रूप में देखना जरूरी नहीं है। तो ये पॉजिटिविटी स्पिरिचुअलिटी से आती है, और वो स्पिरिचुअलिटी जो ये मुकेश भाई कहते हैं ना थॉट लैब में थॉट प्रोसेस को चेंज करना, जब थॉट प्रोसेस ही हमारी मतलब थॉट चेंज हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक एक्शन में पॉजिटिविटी आ जाएगी, और जब एक्शन में पॉजिटिविटी आ जाएगी तो ऑटोमेटिक हम लोग वैल्यू बेस्ड अपना व्यक्तित्व बना पाएंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप वहां अपने स्थान पर जाएंगे तो आज से आप ये प्रण लेके जाएंगे कि अच्छा 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 करते हा? अच्छे बन जाएंगे।
वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा और करेक्ट आपने कहा। ये तो प्रण आप लेकर के ही जाएंगे, पर दीदी ने जिस प्रकार से कहा कि मेडिटेशन हर रोज करना है, एक्शन प्लान बनाने में हमको अगर आप इसका हिस्सा बनाते हैं डेली 15 मिनट के लिए राजयोगा मेडिटेशन अपनाते हैं तो बहुत आपके अंदर चेंजेस दिखाई देंगे। मेरा एक सवाल मेरे मन में आता है हमारे आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी प्रभा दीदी से, अगर एजुकेशन फॉर लाइफ को अगर हम अपनाते हैं सुनते हैं, अगर आपके जीवन को अगर हमने यहाँ से मतलब देखा है पहचाना है तो कौन सी वैल्यूज हम आपसे सीखे?
वैल्यूज तो हमारा जीवन है, और परमात्मा ने हम सबके अंदर अनेक वैल्यूज दी हुई हैं, लेकिन वो वैल्यूज आत्मा की खत्म हो गई हैं। उनको फिर से राजयोग के द्वारा अपने जीवन के अंदर हम वैल्यूज को ला सकते हैं, और जितना जितना हम राजयोग करेंगे उतने हमारे जीवन के अंदर वैल्यूज आती जाएंगी। जैसे कहा ना, जैसा सोच होता है वैसा जीवन बनता है। हम सोचते नेगेटिव हैं तो जीवन भी हमारा नेगेटिव बनता है, अगर हम सोचते पॉजिटिव हैं तो हमारा जीवन भी पॉजिटिव बनता है। अभी मैं आपको एक मिसाल सुनाती हूँ। हमारे पास भरूच में एक कपल आए जिसका बेटा ICS की एग्जाम देकर के घर में बैठ गया, डिप्रेशन में चला गया, और इतना डिप्रेशन में चला गया कि वो माँ बाप को भी मारने लगा, मारता था, इतना मारता था और उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी लड़के की, ना नहाता था ना धोता था ना वो करता था, 20-15 दिन तक नहाना नहीं, बाल बढ़ाना दाढ़ी, इतनी हालत उसकी खराब हो गई। उसके माँ बाप इतना टेंशन में आ गए कि क्या करें, और माँ बाप रात को सो भी नहीं सकते थे कि अगर हम सो जाएंगे तो उठ के हमारा गला दबा देगा, ऐसी पोजीशन थी। तो माँ बाप को किसी ने कहा कि आप ब्रह्मा कुमारी संस्था में जाइए और वहां जाकर के आप राजयोग सीखिए। तो दोनों जने आए और आकर के सारा अपना सुनाया कि ऐसा ऐसा, और बहुत टेंशन में थे वो लोग। फिर उनको ये राजयोग कराया, 7 दिन का हमारा लेसन होता है वो कराया। फिर उनको ये बताया कि आप अपने बच्चे के लिए नेगेटिव नहीं सोचो, आप अपने बच्चे के लिए पॉजिटिव सोचो। उसकी माँ को सिखाया कि आप हमेशा यही कहो, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, और उसको यही अच्छा है अच्छा करके, और उसके लिए मेडिटेशन करो, और मेडिटेशन कर उसके उस खाना भी खिलाओ, पानी भी पिलाओ, जो भी है, मतलब उस बच्चे को आप मेडिटेशन के द्वारा सुधार सकते। सचमुच मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने कोई भी दवाई नहीं की, लेकिन मेडिटेशन किया और उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन दिए, आज वो लड़का ठीक हो गया। तो हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए यहाँ परमात्मा हम जब को जो वैल्यूज दे रहे हैं उन वैल्यूज को धारण करें। सबसे बड़ा तो हम अपने विचारों को पॉजिटिव बनाएं। जितना हम नेगेटिव सोचते हैं और नेगेटिव सोचते सोचते नेगेटिव बनते जाते हैं, जितना सच्चा सोचेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। राजयोग यही सिखाता है कि सच्चा सोचो, श्रेष्ठ सोचो, अच्छे विचार करो, तो अच्छे जीवन बन जाएगा।
दीदी से हमने ये सीखा है कि सकारात्मक सोच होनी चाहिए, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे आदरणीय दीदी को अवार्ड भी मिला है जो रोटरी क्लब भरूच से, भरूच फॉर ह्यूमैनिटेरियन सर्विस नोस फॉर स्ट्रांग, ये वैल्यूज है डिसीजन मेकिंग, इंटीग्रिटी एंड स्पिरिचुअल लीडरशिप। तो हम बहुत तालियों से दीदी का भी, हम एक प्रेरणादायी एक व्यक्तित्व को हमारे अंदर हम एज अ शिक्षा के रूप में अपना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ आदरणीय सर से कि आपने जिस प्रकार से कहा कि स्टूडेंट्स आजकल करियर ओरिएंटेड है, अगर आप उनको कितना भी वैल्यूज के बारे में बताएंगे, ये करेंगे, देखते हैं करते है, मुझे अभी ये बनना है वो बनना है, अगर करियर ओरिएंटेड है तो उनके अंदर हम वैल्यूज को अंदर लाने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे सर जाकर?
मैंने शायद बता दिया, और यही एक सलूशन मुझे लगता है, नाम क्या दें उसका ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो ये राजयोग का थॉट लैब है, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स अगर हम अपनी विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में एस्टैब्लिश करके उन बच्चों के इसके साथ जोड़ें, जो वो पॉजिटिविटी इन देयर थॉट वर्ड एंड डीड आ जाएगा, तो ऑब्वियसली वो इश्यूज नहीं रहेंगे जो माइंड से रिलेटेड इश्यूज हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि वीक माइंड है। आज तो हमने सवेरे सेशन सुना राजयोग के बारे में, है ना, अपने आप को पहचानो, पहचानने में ही हम लोग गलती करते हैं, नहीं क्लियर हैं, या अपने परमात्मा को पहचानो, उधर दूरी है, फिर संगम कैसे होगा, दोनों का मिलन। तो इस तरह के प्रयास करने, हालांकि इसमें कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसी तरह की नहीं है, बट दिस इज अ सर्विस। अगर इस तरह के कॉन्सेप्ट जो हम अभी सीखे हैं अपने अपने इंस्टीट्यूशन में लाने का प्रयास करेंगे, काफी काफी सुधार होगा। वैसे जैसे मैम ने भी बोला, एनईपी का जिक्र किया, वो लोग बोलते हैं यार अपने अपने कॉलेजेस में टीचर्स के माध्यम से आप दो तरह के छात्र छात्राओं को पहचानने का प्रयास करो, एक तो है स्लो लर्नर है, एक तो है फास्ट लर्नर है, एक तो यू नो कौन से आपके स्कूल में आपका मेंटर कौन है, किस तरह से मेंटी से बात करेगा, सारे दिए हैं। मैंने यही बोला ना, उसको जो वो फैकल्टी चाहिए, जो मेंटर अच्छा हो सकता है, उसकी आवश्यकता बहुत जरूरत है, क्योंकि उनको पता नहीं है। अभी मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का जायजा लिया था, जरा मुझे मेंटर मेंटी रिकॉर्ड्स दिखाओ, करते हैं सब लोगों ने किया था, सारे फैकल्टी का अपनी प्रोफाइल थी, मगर जो उसमें इश्यूज थे ना, दे वेर नॉट नियरर टू व्हाट मेंटर मेंटीशिप इज ऑल अबाउट। सो आवर जॉब इज टू, एज लीडर्स, एजुकेशन लीडर्स, इज टू सेंसिटाइज दोज फैकल्टी, हे व्हाट इज दिस मेंटर मेंटी रिलेशनशिप, इट इज मोर देन इवन पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, बिकॉज अ मेंटर एंड मेंटी हैज टू बी हैविंग सच, उनका रिलेशन ऐसा हो कि कोई भी समस्या हो, ये जो मैंने आपको बताया JKLU का एग्जाम्पल, वो रिलेशनशिप का था, किसी को नहीं पता था, किसी से कन्फाइड नहीं किया था, तो एक टीचर अगर उसको पता होता तो सॉल्व कर सकता था। तो ज्यादा न कहते हुए, सोल्यूशन हमारे पास है, इस ब्रह्म कुमारी मिशन ने दिए हैं, कुछ कुछ यहां से कॉन्सेप्ट लेके अपने अपने इंस्टीट्यूशंस में डेवलप करने का प्रयास करें। उन्होंने बताया कई विश्वविद्यालयों ने, कई विद्यालयों ने, कई महाविद्यालयों ने इनके साथ MOU के माध्यम से जोड़ा है, हमारी भी वहां पहल चल रही है। अभी 2-4 सेशंस हमने कराए थे, लेकिन उन सेशन से एक टच सा हुआ, पर हमें डीपर जाना है, इस एसोसिएशन को और स्ट्रेंथन करना है। मेरे ख्याल से जब विश्वविद्यालय या विद्यालय समझेंगे ये धर्म नहीं है, ये एक जीवन जीने की कला है और राह है, और वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन जैसे क्रांतिकारी मिशनों के साथ जुड़ेंगे, बहुत भला हो सकता है।
यस, एक्यूरेट सर। जिस प्रकार से हम सुनते हैं कि एक एग्जाम्पल हमारे आदरणीय गेस्ट जो है, एक्स एजुकेशन मिनिस्टर जो बिहार से आए हैं, उन्होंने भी अपने स्पीच में कहा था कि महात्मा गांधी कैसे बने, उनके गुरुवर्य ने उनको कहा था कि आप एक चक्कर लगाओ पूरे हिंदुस्तान का, उस समय आपको पता चलेगा। तो तुरंत उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दिया, उन्होंने अपनाया। पर यहाँ पे हम एक पर्सनैलिटी देखते हैं हमारे आदरणीय डॉक्टर ममता दीदी जी को, जैसे ही वो जब एज अ प्रिंसिपल होकर के चेयर पे बैठते हैं, तो उनका जो यूनिफॉर्म है, जो आप अभी देख रहे हैं, वही उनका यूनिफॉर्म होता है। तो एज अ देखने का नजरिया दीदी आपके पास, स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, आप कैसे उसको एज अ वैल्यूज के रूप में देखते हैं?
महात्मा गांधी का उदाहरण आपने दे दिया, महात्मा गांधी का ये उदाहरण शायद नहीं था, ये रशिया के जो प्रेसिडेंट आए थे इंडिया में, उनका ये इम्प्रेशन था। वो क्या आए थे, हर जगह गए, हालांकि इरेलेवेंट है, बट ये बताना जरूरी है, हम भी गांधी कहते हैं, सब लोग कहते हैं, मगर प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में क्या है, हम गांधी जैसे बच्चे और परिवारों में ढूंढ रहे हैं, अपने परिवार से शुरू नहीं करते हैं। अगर ये सोच बदलेगी कि हमारा बच्चा भी उस आदर्शों पे चलना शुरू करेगा, तो शायद होगा। रही बात उसकी, जो प्रेसिडेंट था रशिया का, वो पूरा इंडिया भ्रमण किया, घर घर गया, ऑफिस गया, गवर्नमेंट गया, प्राइवेट गया, दूर गांवों में गया, शहरों में गया। तो वहां से जब गया वापस, तो अपनी कंट्री में जब उसको बोला भाई क्या रिपोर्ट था, तो उसने कहा हम लोग तो यार मानते नहीं है भगवान वगवान कोई ऐसी चीज है, ऐसी नहीं है, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया कि अगर भारत जैसा देश है, जहां आप ऑफिस जाओ तो असिस्टेंट नहीं है, जहां विद्यालय जाओ तो टीचर नहीं है, जहां उधर जाओ तो ऑफिस एग्जीक्यूटिव नहीं है, हर कोई नहीं है, फिर भी देश तो उन्नति कर रहा है, देश तो प्रोग्रेस कर रहा है, अगर कोई चीज उसको चला रही है तो परमात्मा ही चला रहा है। तो ये इसका ऑब्जर्वेशन था। थैंक यू सो मच।
भाई साहब ने बोला कि परमात्मा चला रहा है, परंतु परमात्मा ने निमित्त तो हमको बनाया है ना, तो इसीलिए दायित्व तो जिसने हम पर विश्वास किया, हम उसका विश्वास कैसे तोड़ सकते हैं। तो इसीलिए शिक्षक, मैं तो कभी क्या होता है कि बनना था डॉक्टर और बन गए टीचर, बनना था इंजीनियर और बन गए टीचर, मुझे बनना था तो ये और मैं बन गए टीचर। तो मतलब ऐसा माना जाता है कोई कहीं सक्सेस नहीं होता, फिर वो टीचर में चला जाता है, टीचर बन जाता है, और टीचर को जनगणना में डाल देते हैं तो वो सोचते हैं कि ये मेरा काम नहीं है। फिर उनको इलेक्शन ड्यूटी में डाल देते तो कहते ये मेरा काम नहीं है। अब इलेक्शन में नाम, मैडम आपने हमारा नाम इलेक्शन में भेज दिया, नहीं भेजते तो हमारी ड्यूटी नहीं आती। तो हमने कहा ये हमारा काम है, भेजना हमारा काम है, तो आप ड्यूटी करने में क्या प्रॉब्लम है। हम अपने कार्य से जब भटक जाते हैं तो प्रॉब्लम यहां आती है। भैया ने कहा कि मैं अपनी कॉलेज में प्रिंसिपल के रूप में हूं, 10 साल से मैं प्रिंसिपल हूं, 24 साल मैंने प्रोफेसर के रूप में काम किया, लेकिन परमात्मा शक्ति मेरे साथ है और मैं उस परमात्मा शक्ति के माध्यम से मेरे उत्तरदायित्व को ठीक से निभा रही हूं, तो मुझे डरने की भी आवश्यकता नहीं है। और पहले तो मैं अपने आप को पहचानती हूं मैं कौन हूं। अगर हम अपने उत्तरदायित्व से भटक जाते हैं तो प्रॉब्लम्स आती है। मेंटल स्ट्रेस में आकर के किसी ने कहीं आत्महत्या कर ली और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए कि सबको मेंटल स्ट्रेस की ट्रेनिंग करनी है, मुझे तो जरूरत नहीं है, मैं समझती हूं। बात यह हो जाती है कि ऐसा क्यों होता है। सोचते हैं हम कि ये अभाव हमारे जीवन में है, तो अभावों के बीच में जब अभावों के प्रभाव में हम आ जाते हैं तो फिर ऐसा कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं। कभी कभी 10 साल से जब मैं बैठी हूं तो कोई समस्या आती है तो मैडम मैडम ये ऐसा हो गया, ये समस्या आई। मैंने कहा समस्या है ना, तो समस्या का समाधान भी ढूंढते हैं शांति से। जब हम हाइतौबा मचा करके कोई भी कार्य करने जाते हैं तो हमारी बुद्धि क्या हो जाती है, ताला लग जाता है। बुद्धि को ताला नहीं लगाना है, हर समस्या का समाधान है, हर कारण का निवारण है, टेंशन नहीं अटेंशन रखना है, सोच चलानी है। पर ये सोच कब चलेगी, जब हमारा माइंड स्टेबल होगा। और माइंड स्टेबल कब होगा, जब हमारी सोच पॉजिटिव होगी। हमारी दादी जानकी को वर्ल्ड का मोस्ट स्टेबल माइंड, ऐसा वर्ल्ड का मोस्ट स्टेबल माइंड, क्योंकि दादी जानकी जो है ना वो ऐसे पूरी सभा को, हमने अनुभव किया है, पूरी सभा को एक सेकंड में साइलेंस का अनुभव कराती थी शांति से। तो वो उनके अंदर वो पावर थी, क्यों, क्योंकि वो स्पिरिचुअल थी। और स्पिरिचुअल जब हम बन जाते हैं तो हम किसी ये नहीं देखते कि ये तो फलाने मिनिस्टर के बेटे हैं इसलिए काम करना पड़ेगा, ये गरीब का बच्चा है इसीलिए चलेगा, इसके इसको नहीं करेंगे तो चलेगा, ऐसा नहीं। हमारे लिए सारे क्लास के बच्चे एक समान है, सारे बच्चे मेरे बच्चे हैं, माना मेरी कॉलेज के बच्चे मेरे छात्र। क्योंकि टीचर का काम माता पिता बनना भी होता है, तो माता पिता बन करके एक अपने अंदर जो वैल्यू, शुरू शुरू में जब मैं कॉलेज में पढ़ाती थी तो बच्चे मेरे से डरते थे, तो मेरे से दूर रहते थे। तो मैं सोचती थी कि दूर क्यों रहते हैं, फिर मुझे पता चला, फिर मुझे समझाया दीदी दादियों ने कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने कहा दादी ममता। तो ममता का मूल्य, ममता क्या होता है वैल्यू, मैंने कहा स्नेह प्यार वात्सल्य, तो वो देना चाहिए ना। तो मैंने कहा हाँ दादी ये तो ठीक है। फिर धीरे धीरे मैंने बच्चों को थोड़ा सा प्रेम देना भी सीखा और धीरे धीरे बच्चे मेरे आगे आकर के, देखो स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो टीचर को अपने दिल की बात बताते, अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, लेकिन दूसरा वो टीचर जो टीचर को बताते और टीचर को भी मित्रतावत वो बताते कि सर मुझे ऐसा हुआ, मैडम मेरे को ये प्रॉब्लम है। तो शिक्षक जो है ना उसका बहुत बड़ा दायित्व है। तो हम लोग टीचर हैं और टीचर का काम क्या है वो तो आप सब जानते ही हैं, हम सब जानते हैं। फिर भी ऐसे प्रश्न क्यों बन रहे हैं, क्योंकि प्रश्न इसीलिए बनते हैं क्योंकि हम खुद ही प्रसन्न चित नहीं है, ये मेरा काम नहीं है और मुझे सौंप दिया, मैं कैसे करूं, है ना। तो ये सारी चीजें इस प्रकार से जब सामने आती है तो समस्या का समाधान नहीं होता है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमको यही सिखाया है कि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता है, आपको सेवा समझ के करना है, और शिक्षक तो सेवा ही करता है समाज की, तो हम तो समाज की सेवा करते हैं नहीं? कभी कभी हंसी हंसी में एक बार हम एक सरदार जी हमारे बैंक के ऑफिसर थे, तो वो बैंक के ऑफिसर थे तो हमारी सैलरी देखते थे, तो वो सोचते थे कि मैडम आप लोग करते क्या हो, आपकी इतनी सारी सैलरी और आप करते क्या हो, मतलब आपका काम तो क्या है, पढ़ाना बस, दो लेक्चर लेना और क्या है। तो मैंने उनको हंसी हंसी में बोला कि हम लोग जो है ना वो सरदारों को भी बैंक का अफसर बना देते हैं, तो ये काम करते हैं। तो फिर बेचारा एकदम से चुप हो गया। मैंने कहा बात ऐसी है, शिक्षक का मुंह से निकला हुआ एक बोल महावाक्य हो जाता है, तो उस महावाक्य को सुन के पूरा व्यक्ति ट्रांसफर हो जाता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन इस रूप में होना चाहिए कि वो समाज में जाकर के एक बड़ा ऐसा व्यक्ति बने, सबसे पहले टीचर कहे कि ये मेरा स्टूडेंट है, है ना। और बच्चे क्या बोलते हैं, मैं फलाने टीचर का स्टूडेंट हूं, तो वो क्या करते हैं, गर्व लेते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर बनते ही जिन जिन पहली कक्षा से जिन जिन टीचर से वो पढ़े थे उन टीचर को बुलाया और उन सब का सम्मान किया कि आप लोगों की बदौलत मैं प्रधानमंत्री बना हूं। तो देखो टीचर का कितना महत्व है। तो हम अपने महत्व को क्यों कम आके, क्योंकि भगवान भी टीचर है। हम तो कहते सतयुग में भी गुरुकुल परंपरा पहले भी थी और सतयुग में भी कलाएं सिखाएंगे, 16 कला संपन्न देवी देवता बनाएंगे, तो वहां भी तो शिक्षक तो आदि से लेके अंत तक शिक्षक का रोल बड़ा महत्वपूर्ण है जीवन में। इसीलिए मुझे तो बहुत खुशी है कि मैं शिक्षक हूं। और अगर हमने अपने जैसा कोई एक भी बना दिया ना, एक का जीवन भी बनाया, तो हमारा शिक्षक होना सार्थक है। तो यही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है। हम सब ब्रह्मा कुमारी बहनों को टीचर कहा जाता है, शिक्षक बन करके बहनें पढ़ाती है। तो ये एजुकेशन के साथ आज हम लोग जीवन की शिक्षा देना भूल गए हैं, बस इतना, ये मिसिंग लिंक है। खाली पढ़ाते हैं, क्लास में जाके सिलेबस पूरा करते हैं और सिलेबस को पूरा करने के बाद सैलरी जब आ जाती है ओके, दैट्स ओके, बाकी हमें जीवन की शिक्षा, क्योंकि जीवन से बच्चा तो आपको देखता है, टीचर जब सामने खड़ा है उसको देखता है और आदर्श मानता है, शिक्षक को आदर्श मानता है। आप किसी बच्चे को पूछोगे ना कि ऐसा करना चाहिए, मेरी टीचर ने तो नहीं बोला ऐसा करना चाहिए, स्कूल का बच्चा कहता है। तो ये टीचर का जो उत्तरदायित्व है, बहुत आप गहराई से सोचेंगे ना तो हमारा रोल बहुत बड़ा है, समाज बनाने का बड़ा है। और हमने आज क्या बना दिया, मेंटल स्ट्रेस वाले बना दिए, वही पॉडकास्ट करना सिखाया, मतलब इंस्टा पे अकाउंट सिखाया, व्हाट्सएप, ये सब सिखाया, लेकिन अंतर जगत में उतरना नहीं सिखाया। तो ये क्वालिटी हमारी बच्चों के अंदर, हम उनको पहचान सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि ये तुम्हारे अंदर क्वालिटी है, जो क्वालिटी चाणक्य ने बताई थी चंद्रगुप्त को कि ये तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी है, तुम राजा बन सकते हो। तो हम भी अपने बच्चों को राजा बनाते, हमारी दीदियां हमको कहते तुम राजा बन सकते हो। तो इस प्रकार से ये हमारा जीवन होना चाहिए।
जिस प्रकार हमने सुना दीदी के मुख से कि दीदी हमको कहती है, जाते जाते हम एक टेक अवे मैसेज हमारे आदरणीय प्रभा दीदी जी से कुछ ले, तो ये हमारे लिए एक्शन प्लान बन जाएगा।
अभी आप सभी ने बहुत अच्छा सुना, मैं तो यही कहेंगी कि हम सभी को जो परमात्मा ने कार्य करने की ड्यूटी दी है, हर एक को ड्यूटी मिली हुई है, और जो हमको ड्यूटी दी है उस ड्यूटी को हम ऑनेस्टी से निभाते चले तो हमारा भी जीवन ऑनेस्ट बनेगा और हम औरों को भी, औरों के जीवन में भी हम ऑनेस्टी ला सकेंगे। जैसे कहते हैं जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख करके और भी करेंगे। ये लक्ष्य अगर हम अपने जीवन में रख करके चलते हैं तो हमारा भी जीवन श्रेष्ठ होता है और हमारे जीवन को देख करके औरों का जीवन भी श्रेष्ठ बनेगा। इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर हमको विशेष यही शिक्षा दी जाती है कि आप स्वयं को पहले श्रेष्ठ बनाओ और आपको देख करके ऑटोमेटिक सभी श्रेष्ठ बन जाएंगे। आप तो सभी शिक्षक हैं और आपको देखने वाले तो बहुत हैं, तो जो आपको देखने वाले हैं आज हम वही देखते हैं। जैसे ममता बहन ने कहा कि टीचर को याद करता है स्टूडेंट, तो हमेशा बच्चा अपने टीचर की ही बात करता है, मेरी मैडम ने ये सिखाया, मेरी मैडम ने ये सिखाया, मेरी मैडम ने ये बताया, माँ बाप ने ये बताया कभी नहीं सुनाता है, मैडम ने ऐसे सुनाया और ऐसा ही वो करता भी है। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, तो इसलिए आप भी अपने जीवन के अंदर वैल्यूज को लाएं। सिर्फ कार्य नहीं करें, कार्य तो हर एक को करना है, लेकिन कार्य को करते हुए भी जो हमारा कार्य है उस कार्य को हम ना भूल जाएं। अपने जीवन को भी हमें श्रेष्ठ बनाना है तो साथ साथ औरों के जीवन की भी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, तो अपनी जिम्मेवारी समझ करके हम चलेंगे तो हमारा भी जीवन श्रेष्ठ बनेगा और हम समाज को भी श्रेष्ठ बना सकेंगे।
बहुत ही सुंदर दीदी जी ने कहा, एक बार जोरदार तालियों से दीदी ने जो कहा उसको हम एज एक्शन प्लान बना करके जीवन में लाएंगे। तो आज हमने देखा, आज की चर्चा से यह स्पष्ट हुआ कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला है। सही निर्णय लेने की क्षमता और आंतरिक संतुलन विकसित करने का आधार है। जिस प्रकार से हमने हर एक हमारे सम्माननीय अतिथिजनों को सुना, उनके एक्सपीरियंस को हमने बहुत दिल से स्वीकार किया और हमारे एक्शन प्लान भी यहाँ करके हमने बनाया, तो आप सभी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पे आए। हाँ, आप यहाँ पे आए और आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने डायरी में एक्शन प्लान बना करके यहाँ से जाएंगे। तो मैं आगे नम्र निवेदन करता हूँ कि सम्मानियों को सौगात लेकर के उनका आदर सत्कार करें। सभी ने लिखा अपना एक्शन प्लान नोटबुक में? किसने किसने लिखा? सभी ने लिखा, सभी हाथ खड़े कर रहे हैं, मन का हाथ खड़े कर रहे हैं। सब जोरदार तालियों से उनका सम्मान करेंगे। अब हम 2 मिनट के लिए एक ऐसा गाना सुनेंगे कि जो गाना आपने पहले भी सुना होगा, पर ये गाना हमको हर बार एजुकेशन फॉर लाइफ की आपको याद दिलाएगा, इस कॉन्फ्रेंस की आपको याद दिलाएगा। ओम शांति।